أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پردگار عالم کا انتہائی لطف کرم، شکر اس کا کہ اس نے ہمیں فرش سید الشہداء پر بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اعضا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو خدا نے متعال ان کی نورانیت سے منور فرمایا، محشر میں سیدہ کا سایہ نصیب فرمایا، ان کی شفاعت سے سرفراز فرمایا. وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے باوجہ بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے ہم انسانوں کی تمام مشکلات کو اور ہم انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، اور انسان کا وجود اس اعتبار سے ایک پیچیدہ وجود ہے کہ اس کی کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ جو سادہ طریقے سے انسان کو اگر دیکھا جائے، صرف اس کے جسم کو دیکھا جائے، تو انسان ان ضروریات کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جو دنیا کے نظاموں کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں. یہ انسان کو اس کے ظاہر کے اندر دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک دور تھا جب انسان کو صرف اس کے جسم میں دیکھتے تھے اور ان ضروریات کو پورا کرنے سے سمجھتے تھے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد تھوڑی سی اور بہتری آئی ہے اور احساس کیا کہ نہیں، انسان کی کچھ نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں، اور ان ضروریات میں مثال کے طور پر اس کا سوشلائزیشن ہے، اس کو ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس سوسائٹی کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے معاشرے کے اندر جو حتیٰ جن کا کوئی تعلق خدا سے بھی نہیں ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی جو سوشل بیہیویئرز ہیں ان کی ضرورتوں کو بھی کہیں نہ کہیں پورا کیا جائے. لیکن ابھی جو مشکل ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا خاندان بھی انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جدید معاشرہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے، تو ان کے نزدیک خاندان اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے. لہذا خاندان کے درہم برہم ہونے کی بہت سارے ایلیمنٹس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، نافذ ہیں، رائج ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے جس کا یہ تقریباً انکار کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کر رہے ہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ انسان کی روحانی ضرورت ہے. جسم کے علاوہ، سوشلائزیشن کے علاوہ، سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، تعلقات ہیں، اس کے علاوہ آیا انسان کی کوئی روحانی ضرورت بھی ہے؟ یہ اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا، یہ جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر یہ ضرورت ہے. इनकार करेंगे हमारे सामने, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मस्नूई तरीके से पूरा करना चाहते हैं, मस्नूई चैनल खोलते हैं। ये एक अजीब पेचीदा मामला है मुझे कि तमाम तो ज़रूरतों को मस्नूई रास्तों से पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अम्मत आले अम्मत अचल फरत। इंसान के अंदर एक जज्बा है वो ये किसी सुपीरियर एग्जिस्टेंस को कबूल करना चाहता है, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर देखता है, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर देखता है तो इस कायनात के अंदर किसी सुपीरियर को एक्सेप्ट करना चाहता है, और ये वो जज्बा है जिसको खुदा की समत लेकर जाता है। अच्छा, अब इस बीच में कुछ लोग हैं जो खुदा का इनकार किए बैठे हैं। अब जबकि खुदा का इनकार किए बैठे हैं तो इनको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। एक तो इस वजह से रिप्लेसमेंट चाहिए, दूसरा ये कि इनको अपनी बातों को मनवाने के लिए कोई और रुख चाहिए, कोई और वजूद चाहिए जिसकी वजह से अपनी बातों को मनवाएं। मैं चूंकि ये जुमला कह रहा हूं इसलिए और इसकी वजाहत के लिए एक और मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन मुनासिबत बनती है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगार आलम ने बुत परस्ती को मना किया, शिद्दत के साथ मना किया। मसलन अहले किताब को एक्सेप्ट किया, अहले किताब मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी को नहीं मान रहे थे, लेकिन अहले किताब की सैंक्टिटी को, उनके तकद्दस को फिर भी खुदा ने एक्सेप्ट किया। मिसाल के तौर पर उनकी इबादत गाहों का एहतराम किया, उनको तोड़ने का हुक्म नहीं दिया, बुतों को नहीं महफूज किया, बुतों की मुखालिफत की, शिद्दत के साथ मुखालिफत की। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मिसकंसेप्शन की वजह से कोई ये कहे कि भाई हम फला इबादत गाह में गए, वहाँ पर भी मुजस्मे रखे थे, तो इन मुजस्मों में और उस बुत पर कदे में इनमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर भी तो मुजस्मे, और आप जाकर देख लीजिए पूरी दुनिया के, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इबादत गाहें बनी हुई हैं, इनमें मुजस्मे लटके हुए हैं, जगह जगह मुजस्मे लगे हुए हैं। तो कोई मुमकिन है कहे कि भाई ये भी तो बुतकदे हुए, इनमें भी तो मुजस्मे लटके हुए, तो खुदा ने इनको बुतकदा नहीं कहा, इनकी सैंक्टिटी को कबूल किया। और कुरान करीम में इशारत फरमाता है कि जब ज़मीन में फसाद बरपा होता है तो इशारतन फरमाता है उस वक्त होता है जब सारी इबादत गाहें तबाह हो जाती हैं, उनमें कनीसाओं का तस्कर भी करता है। इबादत गाहें तबाह हो जाएं तो फसाद की निशानी है खुदा ने मुताल के नज़दीक। तो इनको एक्सेप्ट किया, क्यों एक्सेप्ट किया? कहा नहीं, बुत परस्ती उसकी मुखालफत होगी। अब बुत परस्ती से खुदा क्यों लड़ रहा होता है? अगर दीन बीच में है तो खुदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर महज बुत परस्ती हो, कोई दीन पीछे ना हो सिवाय बुतों के, खुदा ने मुताल उसे कबूल नहीं करता। क्या वजह है? एक वजह शायद ये है कि खुदा ने मुताल जानता है कि अगर दीन बीच में है तो खुदा है, और उस खुदा की कोई किताब भी है, उस खुदा का कोई नबी भी है। बुत परस्ती के अंदर कोई किताब नहीं है, कोई नबी नहीं है। अच्छा, जब किताब भी नहीं है और नबी भी नहीं है, तो ये जो बुत को खुदा मानता है ये अपने बुत या खुदा के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, उससे कमांड कैसे लेता है? आप तसव्वुर फरमा रहे हैं, अगर दीन होता है तो दीन में एक नबी होता है जो हुक्म देता है। तो मिसाल के तौर पर चाहे अल्लाह के नबी को उन्होंने आखिरी नबी नहीं माना, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना हुआ है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात को रिगार्ड्स देते हैं। मसलन जो यहूदी आबादियां हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं माना, हज़रत ईसा को भी नहीं माना और अल्लाह के नबी को भी नहीं माना, दोनों को नहीं माना नबी के तौर पर, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिगार्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, इनकी किताब भी है, ईसाइयों के पास भी किताब है, यहूदियों के पास भी किताब है, साबित हो जाए ये किताब खुदा नहीं है, कोई और है, या इसके अंदर इनहराफ तहरीफ है, ये एक अलहदा मामला है, लेकिन किताब है, नबी है। खुदा ने इनका मुकाबला नहीं किया, बुत परस्ती का मुकाबला किया। क्यों? ना किताब है ना नबी है, तो खुदा का हुक्म आता कैसे है फिर? अब तसव्वुर फरमाए, खुदा का हुक्म आने के लिए ओपन फील्ड है उस बंदे के लिए जो बुत के पीछे बैठा हुआ है, जो हुक्म देना चाहे दे दे। अगर एक शख्स मक्के के अंदर बुत के सामने सर झुकाए हुए है और बुत का निगहबान अबू जहल है, बुत हुक्म देगा क्या? नहीं। कौन हुक्म देगा? अबू जहल हुक्म देगा। कोई लिमिट है कि क्या हुक्म देगा? कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए ओपन है कि जो हुक्म देना चाहे बुत के नाम पे दे दे और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई हमें अगर बुद्ध की बात समझ में नहीं आ रही तो तुझे कैसे बुद्ध की बात समझ में आ रही है, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो बुद्ध के नाम पे हुक्म देगा। अच्छा, अब जब ये बुद्ध के नाम पे इंडिपेंडेंटली हुक्म देगा तो करेगा क्या? ये करेगा कि तमाम इंसानों को बुद्ध के नाम पर अपना गुलाम बनाएगा, ये गुलामी करवाएगा। और ये कि बंदा किसी बंदे का गुलाम हो, ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा कहता है हमने इंसानों को आजाद खल्क किया, तुमको आजाद खल्क किया है, आजाद जिंदगी गुजारो। गुलामी, एक दूसरे की गुलामी को पसंद मत नहीं करता वो, तो हमें आजाद जिंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है। इस खातिर वो बुत परस्ती को खतन पसंद नहीं करता। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आया बुत परस्ती का कोई पैटर्न चेंज हुआ है आज के दौर में? मसलन इस वक्त के दौर में वो बुत परस्ती जो उस जमाने में थी अब नजर नहीं आ रही। तो मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो एक और स्कॉलर ने इस्तेमाल किया था किसी मौके पर बहुत पुराना, वो ये कि क्या 20वीं सदी की कोई और जाहिलियत है यहां पर? एक तो वो जाहिलियत थी जो अल्लाह के नबी के जमाने में थी, खत्म हो गई थी। अब 20वीं, अब तो हम 21वीं सदी के अंदर, आया 21वीं सदी की कोई और जाहिलियत आ गई है क्या? हमें खतरा है कि हाँ आ गई है। अब एक और जाहिलियत आ गई है। उस जाहिलियत ने क्या किया है? उस जाहिलियत ने भी उसूलन वही किया है जो 1400 साल पहले की बुतपरस्ती ने किया था। क्या किया? वहां उन्होंने बुत को रखा था खुदा की जगह पे, खुदा को उठाया, खुदा की जगह पे बुत रख दिया कि ये खामोश रहेगा, इसके नाम पर जो हुक्म देना है देते चले जाओ। मुझे खतरा है, और पिछलों को स्टडी करने की वजह से और उनके बताए हुए की वजह से ये खतरा और स्ट्रेंथ पाता चला जाता है कि आज के दौर में एक नया बुत आया हुआ है। वो बुत क्या है? उस बुत का नाम है सोसाइटी। खुदा को रिप्लेस कर दिया है, सोसाइटी को उसकी जगह पे रख दिया है। जो हुक्म खुदा की तरह दिलवाना हो सोसाइटी के चैनल से दे देते हैं, और सबके ऊपर जिस तरह खुदा की पैरवी वाजिब है इस तरह सोसाइटी के पास हुए हुए रूल्स की पैरवी वाजिब है। नहीं हुआ तो जैसे दुनिया आखरत में कोई जहन्नम में जाता है तो वो दुनिया में जहन्नम में चला जाएगा अगर उसने सोसाइटी के पास किए हुए कानून की पैरवी नहीं की। अच्छा, कोई पूछने वाला है कि भाई तुमको इतनी अथॉरिटी कहां से मिल गई? इसके लिए बहुत सारे टाइटल्स जमा हुए हैं। तो जो बात मुझे समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि हम एक और दौर की जाहिलियत के अंदर मुब्तला होगा, एक और दौर की बुतपरस्ती के अंदर मुब्तला हुए, सिर्फ कलर चेंज हुआ हमारे पास। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि आया ये जो बुतपरस्ती होगी ये हमें कहां पर लेके चली जाएगी। मफादात उन्हीं के पूरे होंगे जो ताकत में होंगे। और जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, अभी इसको आप क्लेम की हद में ले लीजिए, वो ये है कि मुझे कभी नहीं लगता कि दुनिया के अंदर जब नुमाइंदगी के नाम पर नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो ये वाकई लोगों के नुमाइंदे होते हैं जो मुंतखब होते हैं। कभी बिल्कुल डायरेक्टली गलत हो रहा होता है, कभी इनडायरेक्टली किसी चैनल को इस्तेमाल करके किसी और पार्टी के मफादात पर फिर कुछ लोग आ रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये काम नुमाइंदगी की हद में भी हत्ता सही नुमाइंदगी की सूरत में अंजाम पाता हो। अलबत्ता जाहिर है कि ये एक डिस्कशन है जो कह सकते हैं किसी हद तक पॉलिटिकल डिस्कशन है, मुझे कि वाकई ये चैप्टर किस तरीके से दुनिया में अंजाम पा रहा है। लेकिन जो बात समझ में आती है मुझे कि हम एक और तरह की गुलामी में कहीं मुब्तला हो रहे हैं, और उस गुलामी के नतीजे में सिर्फ जो मुसीबत आ रही है वो हम अपनी ज़िंदगी की आज़ादी से महरूम होते चले जा रहे हैं। मैं इस आज़ादी के ऊपर और इंसान की ज़रूरतों के दूसरे पहलू यानी रूहानियत के ऊपर चंद जुमला तौर अर्ज़ करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसानों के बनाए हुए निज़ाम की मुश्किलात में से एक मुश्किल ये होती है कि ये कभी भी इंसान की हकीकत को मुतलक नहीं समझ पाता, जामियत के साथ नहीं समझ पाता। जितना समझ पाता है उतना इसको हल करने की कोशिश करता है, अगर सिंसियर भी हो। सिंसियर नहीं हुआ तो सिर्फ अपने मफादात के पीछे जाएगा, दूसरे की इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। अगर हम ये सोचें कि आज के दौर के जो निज़ाम हैं ये मफाद परस्त नहीं हैं, मुखलिस हैं, और मुखलिस होते हुए मुश्किल को हल करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हत्ता अगर सोचें कि मुखलिस हैं, अब भी एक मुश्किल है। क्या इन्होंने इंसान की हकीकत को समझ लिया? इंसान की जिंदगी के सारे पहलुओं को पहचान लिया? अगर नहीं पहचाना है तो पूरे खुलूस से भी निज़ाम बनाएंगे तो अधूरे इंसान बनाएंगे। अधूरे इंसान बनाएंगे। अच्छा, ये जो अधूरे इंसान होंगे ये अपनी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है निजाम में नक्स ईजाद करेंगे, और उस नक्स को आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर बनता हुआ देखेंगे। मिसाल के तौर पर यह इंसान की मानवियत को एड्रेस नहीं करना चाह रहा है। क्यों? पहली बुनियाद यह रखी हम खुदा को नहीं मानेंगे, पहली बुनियाद यह रखी खुदा को नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये जबकि सेकुलरिज्म के अंदर यह नहीं होना चाहिए था। सेकुलरिज्म के अंदर क्या होना चाहिए था कि हम इस मसले को नहीं छेड़ेंगे कि खुदा है या नहीं है। अगर ट्रू सेकुलरिज्म होता तो उस सेकुलरिज्म के अंदर यह होना चाहिए था कि हम इस मसले को नहीं छेड़ेंगे कि खुदा है या खुदा नहीं है। लेकिन इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर क्या किया, हम खुदा को नहीं मानेंगे। और वो किस तरीके से, अभी कुछ वक्त पहले अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और केस की नौइयत यह थी कि आया इंटेलिजेंट प्लान को, कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन में किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने प्लानिंग की है जो खुदा की तरफ एक रेफरेंस है। अमेरिका के अंदर इस बात पे केस गया कि आया इंटेलिजेंट प्लान को एक ऑप्शन के तौर पर स्कूल में कोई पढ़ा सकता है क्या? आप समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि खुदा है या खुदा नहीं है, नहीं ये बात नहीं हो रही। ये नहीं कह रहे कि खुदा ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं ये बात नहीं हो रही। इंटेलिजेंट प्लान यूनिवर्स का है या नहीं है ये भी कंफर्म वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन के तौर पे पढ़ाना चाह रहे हैं सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि नहीं, ऑप्शन के तौर पर भी नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब क्या है, आप ऑप्शन के तौर पर भी खुदा जैसे किसी नजरिए को कबूल करने को तैयार नहीं है, ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के अंदर आपको यह कहना चाहिए था कि कोई माने या ना माने हमें उससे सरोकार नहीं है, स्टेट इस इशू के अंदर दखालत नहीं देगी। और आप सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक इशू कर रहे हैं कि खुदा खुदा नहीं, इंटेलिजेंट प्लान को ऑप्शन के तौर पर भी कोई नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब है आप डेलिबरेटली कह रहे हैं कि हमें खुदा का या खुदा जैसे किसी थ्योरी का नाम भी नहीं सुनना है, नाम भी नहीं सुनना है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये मादी एतबार से बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेडिकल साइंस के सारे डॉक्टर्स जमा हों और वो कहें कि आज से लंग्स की डिजीज पर कोई काम नहीं किया जाएगा। सही है, लंग्स को स्टडी नहीं किया जाएगा, लंग्स की डिजीज पे काम नहीं किया जाएगा, ऑप्शन के तौर पर भी कोई लंग्स को स्टडी ना करे तो कैंसर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, इससे लंग्स के कैंसर खत्म हो जाएंगे सारे। अब किसी के फेफड़ों में कोई खराबी नहीं आएगी क्या? नहीं, आप कह रहे हो नहीं करोगे, अगर रियलिटी में हुआ तो क्या होगा? तय कर लिया हम सोसाइटी में खुदा को नहीं आने देंगे, नाउज बिल्लाह ताला, ठीक है आपने नहीं आने दिया। ये जो इंसानों के अंदर वजूद में खुदा की तलब है इसका क्या होगा? सॉल्यूशन निकाला इन्होंने, कहा ठीक है ये जो मास्टर प्लानर्स हैं उनको पता है कि ये है, ये मत सोचेगा कि उनको नहीं पता। क्यों? ये जो बहुत बड़ा मास्टर प्लानर है वो शैतान के सिवा कोई नहीं है फिर यहां पे, और उस मास्टर प्लानर को अच्छी तरह पता है कि खुदा है, खुद अल्लाह को रब कहता है और बंदों को उस रब से दूर फेंकता है। वरना कुरान करीम कहता है कि ये जब शैतान एड्रेस करता है खुदा को तो कहता है रब, यानी है, मैं कबूल करता हूं कि है, लेकिन बंदों को दूर फेंक रहा है। तो जो मास्टर प्लानर है उसको पता है कि खुदा है। अच्छा, अब उसको पता है कि खुदा है, उसने नीचे वाली जो क्लास थी उससे कहा तुम प्लानिंग करो कि खुदा का नाम नहीं आएगा, खुदा का नाम नहीं आएगा। ये जो बंदों के अंदर खुदा की डिमांड है ये कहां से पूरी होगी? इसका भी सोल्यूशन निकाला, उसने कहा हम इसको म्यूजिक से पूरा करेंगे, आर्ट्स से पूरा करेंगे, इसको हम लोगों के इमोशंस को म्यूजिक, आर्ट्स और ऐसी चीजों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि जिस आदमी को अपनी बॉडी के अंदर खाने की जरूरत है, खाने की मूवी दिखा के उसका पेट भर सकते हो क्या? मूवी पेट नहीं भरती है, 6 घंटे 8 घंटे मुमकिन है भूखा होके देखता रहेगा खाने को, एक वक्त चीख कर कहेगा मुझे खाना चाहिए, ये मेरा पेट नहीं भर रही है। 70 more than 70 years रशियन फेडरेशन ने अल्लाह के नाम से जंग की है, तमाम इबादतगाहों को बंद किया है, ताले लगाए, खोलने की इजाजत नहीं है, बहुत सों को मिसमार कर दिया, डिमोलिश कर दिया, क्या नाम है खुदा खत्म हुआ है? नहीं। अब हम 21वीं सदी की जाहिलियत में इस बात को सोसाइटी के नाम पर फिर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सदी में सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म के नाम पर यह काम किया था, 21वीं सदी के अंदर फिर खुदा का मुकाबला अब हम किस नाम पे कर रहे हैं? सोसाइटी के नाम पे कर रहे हैं। और ये सोसाइटी को पावर किसने दिए? कह रहे हैं वोटिंग प्रोसेस ने इसको ये पावर दिए कि जो करना चाहे कर सकती है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, जरूरत बाकी रहेगी। अच्छा, अगर जरूरत आपने पूरी नहीं की तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा? इसका मतलब है एक स्पिरिचुअल डिसऑर्डर लोगों के अंदर क्रिएट होगा। स्पिरिचुअल डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो क्या मतलब? इसका मतलब है ये लोग अल्टीमेटली जंगों की तरफ जाएंगे। जब ह्यूमन सोसाइटी का केओस संभाले नहीं संभलता तो इसके मास्टर प्लानर क्या करते हैं? जंग करते हैं। अगर आप फरिश्तों के उस पहली शिकायत को देखें जो फरिश्तों ने इंसान के बारे में किए, वो क्या है? ये जमीन पे फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। जमीन पे फसाद बर्पा करेगा और ये खून बहाएगा। ये फरिश्तों को अच्छी तरह समझ में आ गया था ह्यूमन नेचर के अंदर उसके मटेरियल एस्पेक्ट को देखते हुए कि इनमें से कुछ लोग, चूंकि मटेरियल एस्पेक्ट इनके अंदर है, ये गुमराही पे जाएंगे। गुमराही पे जाएंगे तो अपनी मादा परस्ती के अंदर खुदा का इनकार करेंगे। जब खुदा का इनकार करेंगे तो स्पिरिचुअल क्योस क्रिएट करेंगे और इस क्योस को संभालने के लिए एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। ये इस काम को करेंगे। अब आपके सामने एक मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद इंतहाई सिविलाइज माशरे के इंतहाई एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड लोग डॉक्यूमेंटेड वो इनह्यूमैनिटीज कर रहे हैं जिनको देखकर इंसान का सर झुक रहा है। इंतहाई सिविलाइज्ड सोसाइटीज के बहुत ज्यादा ट्रेन्ड लोग वो इनह्यूमैनिटीज कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड, जो कोर्ट्स के अंदर साबित हो गई हैं, जिसको देखकर इंसान का सर झुका हुआ है। क्या यह इस बात की निशानी है कि सोसाइटी में ऑर्डर है, या यह इस बात की निशानी है कि सोसाइटी में डिसऑर्डर है? ये सोशल डिसऑर्डर की निशानी है। इसका मतलब क्या है? जाहिरी ऑर्डर के पीछे एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर छुपा हुआ है। अच्छा, अब यह डिसऑर्डर कहां जाहिर होता है? जब इसको एहसास होता है कि मेरे ऊपर कवर नहीं है, जब इसको यह एहसास होता है मेरे पास कवर नहीं है, मुझे कोई कवर करने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो यह अपने डिसऑर्डर को खोल देता है। इन्नल इंसान लयदगा अर्राहु इस्तगना, इंसान यकीनन तुगयान करेगा, बगावत करेगा जब भी अपने आप को बेनियाज पाएगा। जैसे ही देखेगा कि वो जो सोसाइटी का कवर था जो गॉड की रिप्लेसमेंट में आया हुआ है, जैसे ही देखेगा वो नहीं है, तो फिर जो दुनिया भर की एट्रोसिटीज हैं वो कर डालेगा। ये उस स्पिरिचुअल डिसऑर्डर का नतीजा है। अच्छा, अब सवाल ये, तो मैंने आपकी खिदमत में सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली, हमारे अंदर वो जो स्पिरिचुअल कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? खुदा तआला ने हमें इबादत का निज़ाम दिया, इबादत का एक निज़ाम दिया, कहा इस इबादत के निज़ाम को लेकर चलो, तुम्हारे अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है। और उन इबादत की सपोर्ट के लिए खुदा तआला ने अखलाक का निज़ाम दिया हुआ है कि ये जो इबादत होंगी ये उस वक्त असर दिखाएंगी जब ये अखलाकी निज़ाम तुम्हारे अंदर नाफिज होगा। और ये वो चीज़ है जो मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि आप और मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लेकर आए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यानी जिस तरह वो खाने की तस्वीर देख कर पेट नहीं भरता है, मानवियत की बातें सुनकर रूह को तस्कीन नहीं होगा, रूह को उसके रास्ते पे चलना होगा, तब रूह को असली तस्कीन होगा, वरना ये रूह इसी मुश्किल के अंदर मुब्तला रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौला सैयदुश्शोहदा के एहसान है हमारे ऊपर कि हमें ये मौका नसीब हो रहा है कि उनके खानदान के जरिए से हम उन अखलाकियात से आशनाई हासिल कर रहे हैं, जान पहचान हासिल कर रहे हैं। आप तसव्वुर फरमाइए, हमारे पास 250 साल की आला तरीन अखलाक की सुन्नतें सीरतें मौजूद हैं। एक लम्हे को सोचें, अगर ये 250 साल की सीरत हमारे पास ना होती तो किसके पीछे चल रहे होते? خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر نہ ہوتا یہ امامت کا سلسلہ ہمارے سامنے یا نعوذ باللہ تعالی ہم اس سے محروم ہو گئے ہوتے, آج نہیں معلوم عمر سعد کو اپنا بڑا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے نعوذ باللہ تعالی, اور بہت سارے عمر سعد جیسوں کو اپنا بڑا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس مصیبت میں کیوں پھنسے ہیں؟ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکر نعمت بجا لاؤ گے تو ہم نعمت میں یقیناً اضافہ کریں گے, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب شدید ہے. اور عذاب شدید کیا ہوا؟ وہ یہ کہ اخلاقیات کے نام پر ان کے پیچھے چل گئے جن کو اخلاق کی روح کا بھی علم نہیں ہے, نام کا بھی علم نہیں ہے ان کو. اور اس کے بعد پھر یہ مصیبت تھی جو ہمارے سامنے آئی. وہ کیا مصیبت؟ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ یہ کہ جو وحشیانہ ترین درندگی ہو سکتی تھی جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرے گا, وہ خدا کے نام پر یہ انسان کر دیتا ہے. خوارج کی داستان آپ کے سامنے, اور جدید دور کے خوارج جو کچھ کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے. اور یہ وہ پکچر ہے, کوئی انسان دیکھے تو تعجب کرے, کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں, نام کے اسلام ماننے والے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, تو پھر یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو انسان نہیں کرنا چاہیے دوسرے انسان کے ساتھ, جانور کے ساتھ نہیں کرتا ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں اس طرح سے؟ میں نے بھی خدمت میں عرض کیا کیونکہ محور خراب کیا, اخلاق کا جو اسکیل تھا وہ خراب کیا, اس کو خراب کرنے کے بعد اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ یہ اس طرف گامزن ہوں گے. اور ایک بات کی طرف ہم اور توجہ کر لیں, وہ یہ کہ عزیزان محترم, خدا نے کسی قوم کے ساتھ دائمی فضیلت کا وعدہ نہیں کیا ہوا. اگر ہم فضیلتوں کے راستے پہ نہیں چلیں گے, تصور نہیں کیجیے گا خدا نے ہم سے کوئی دائمی وعدہ کیا ہوا, یعنی پرماننٹ اس کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں فضیلت ہمیں ملے گی, نہیں ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. خدا بنی اسرائیل کو ایک موقع اوپر فرماتا ہے فضلنا, ہم نے ان کو فضیلت دی, اور اس کے بعد ایک موقع پہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ, ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دیا ہم نے. کیوں؟ کہا فضیلتوں پہ عمل نہیں کیا. اب ہم لوگ بہت اچھی دنیا میں ایک اعتبار سے, وہ حقائق جو 1400 سال سے کتابوں کے اندر تھے اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, لیکن ایک سختی کے ساتھ ہے. اب دنیا کیمپس میں تقسیم بھی ہو رہی ہے, اگر آپ نے فوراً اپنے آپ کو اچھے کیمپ میں اکوموڈیٹ نہیں کیا, نہیں معلوم آپ کا کیمپ کون سا ہے. پھر مجھے جو مسلسل احساس ہو رہا ہے, کوئی بھی پاکستان جاتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے, کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو اتنا بری حالت میں دیکھا ہے, ان کا دین اتنا بگڑ رہا ہے, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اچھا, میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تم جن لوگوں سے ملے ہو ان کے مقابلے میں اچھائی کی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں جو اسی پاکستان کے معاشرے کے اندر ہے. تو پاکستان کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ لوگ اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں؟ جواب یہ, لوگ اچھے بھی ہو رہے ہیں, جو اچھے ہو رہے ہیں وہ اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو برے ہو رہے ہیں وہ برائی کے اندر آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن. سوسائٹی دو پولز میں تقسیم ہو رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمل صرف پاکستان جیسے میں نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوگا کہ یہ پولرائزیشن ہو جائے گی اور دو کیمپس بن جائیں گے. اور جتنا یہ بنتا چلا جا رہا ہے مجھے اور یقین ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے امام کا ظہور نزدیک آ رہا ہے. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد عجل فرج. تو ایزان محترم, بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ نفس پہ محنت ہونی چاہیے. نفس پہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور یہ مت سوچے گا ایک اور وقت ملے گا تب آپ نے کرنا ہے, نہیں یہ نہیں ہوگا. مثلا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں, میں 17.5 سال کی عمر میں قم میں گیا, اور میں مثلا سوچ رہا تھا کہ یہ جو قم میں جانا ہے یہ وہ وقت تھا جس میں اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی تھی. وہ تو ٹوٹل 12 سال تھا, اس کے بعد جو زندگی اس میں کیا کرنا ہے مجھے؟ مثلا آپ اپنی زندگی میں یہاں تک آ گئے نا, اپنے پروفیشنل کیریئر میں, یا آپ جوان ہیں یا ادھیڑ عمر میں, جہاں کہیں بھی آپ یہاں تک آئیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں سب نے 12 سال قم جانا ہے؟ کس نے جانا ہے؟ کتنے لوگوں نے جانا ہے؟ تو نفس کے اوپر محنت صرف ان لوگوں نے کرنی ہے جنہوں نے قم اور نجف جانا ہے. اچھا, باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر؟ باقی لوگوں نے بھی کرنا ہے, جو جہاں ہے وہیں رہتے ہوئے کرنا ہے, یہ قوم و نجف کا معاملہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا معاملہ ہے، جو جہاں ہے اس کے اوپر ہے یہ. مثلا عنوان بصری، اگر ہم دیکھیں عنوان بصری تو یہ پتہ نہیں پیشے کے حساب سے شاید کپڑے بیچنے والے ہوں، ممکن ہے جوتے ٹانکنے والے ہوں، ممکن ہے کوئی اور شغل ہو. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں، یا مثلا مثال کے طور پر مینجمنٹ کے اندر ہیں یا مارکیٹنگ کے اندر ہیں، تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ نہیں بے نہیں، بالکل جس طرح کسی قوم و نجف میں پڑھنے والے کے لیے ہے، بالکل اسی طرح آپ کے لیے ہے. یہ لمرید طریق اللہ تعالی، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کر رہا ہے. تو عزیزان محترم آپ کے لیے ہے یہ، البتہ بطریق اولا، اور زیادہ بہتر اس کے لیے جو واقعا اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. لیکن الحمدللہ آپ کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا، ہم نے حدیث عنوان بصری کو پڑھتے ہوئے کئی مراحل طے کیے، اور مولا نے جو ان کو تعلیمات فرمائی تھیں حقیقت عبودیت کے بارے میں وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، حقیقت عبودیت کے جو اثرات تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے کہ اس کے اوپر دنیا، ابلیس، خلق، دنیا کے مصائب، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اپنے نفس کی اصلاح میں اتنا مشغول ہوگا کہ لوگوں کے سامنے فخر و مباحت کرے، لوگوں کے سامنے شو کرے، ان سب چیزوں کا اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا. اس کے بعد عنوان بصری نے کہا اوسینی، مولا مجھے وصیت فرمائے. مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. تین کا تعلق ریاضت النفس سے ہے، نفس کی ریاضت سے ہے، تین کا تعلق حلم سے ہے، اخلاقیات سے ہے، اور تین کا تعلق علم سے ہے. اور ہم نے ریاضت النفس کی تین چیزیں آپ کی خدمت میں کل مولا کی بیان کی بھی بیان کی کہ امام نے فرمایا کہ اس وقت تک مت کھانا جب تک کہ اشتہا نہ ہو، اللہ کا نام لے کے کھانا، اور اتنا کھانا کہ اللہ کے رسول کی اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھنا، سلسن لطعامہ، سلسن لشرابہ، وسلسن لنفسہ، ون تھرڈ کھانے کے لیے، ون تھرڈ پینے کے لیے، اور ون تھرڈ اپنے نفس کے لیے. اور یہ ایک دستور بنتا ہے ریاضت النفس کا. اس کے بعد اب ریاضت العلم کیا ہے، حلم کیا ہے، اخلاقیات میں کیا کرے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور علم کی ریاضت کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولانا نے فرمایا واللبائی فی الحلم، اور جو کچھ حلم کے لیے ہے انسان کے اندر، اخلاق تہذیب نفس کے لیے ہے. مولانا نے فرمایا ومن فمن قول لك ان قلت واحدا سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدا. پہلی بات بہت سادہ سی اور بہت بنیادی، فرمایا اگر تم سے کوئی کہے کہ ایک بات کہی تو دس سنو گے، تو تم اس سے کہنا کہ تم دس بھی کہو گے میں ایک بھی نہیں سناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کی ذاتیات پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہاری ذاتیات پہ حملہ کروں گا، اور کہتا ہے تم نے ایک لفظ بھی کہا دس دفعہ حملہ کروں گا. آپ کا جواب کیا ہے؟ کہ آپ کہیں کہ میں ایک دفعہ کہتا ہوں تم کرو پھر میں تمہیں جواب دوں گا؟ نہیں، آپ فرمائے تم نے دس دفعہ بھی حملہ کیا نا، میں تم پہ کوئی حملہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں ذاتیات کی جنگ لڑنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، ذاتیات کی جنگ میں نہیں پڑوں گا. یہ بڑی نفیس بات ہے. آسان ہے کیا؟ انسان بہت کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے مادی نقصانات میں سے، لیکن جب اپنی ذات کے اوپر کوئی گفتگو سنتا ہے، گفتگو سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور خاص کر اگر گفتگو کا جواب گفتگو سے دینا ہو تو زبان ہلانے میں کسی کو دیر نہیں لگتی. امام فرما رہے نہیں، یہ زبان ہلانے ہی میں مسئلہ ہے. یہاں پہ نہیں فرمایا کوئی تمہارے ساتھ گندی اسٹریٹجی کرے تو تم غلط اسٹریٹجی نہیں کرنا، نہیں، صرف بات کی بارے میں بات ہو رہی ہے. بات بھی مت کرنا، عمل کی بات دور کی ہے. کہ میں پلاننگ کروں اور اس کو پھنساؤں، امام نے فرمایا نہیں، پلاننگ کی بات نہیں ہے، صرف گفتگو کی بات بھی مت کرنا. تمہاری ذاتیات پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور میں قید لگا رہا ہوں تمہاری ذاتیات پہ. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی دین کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. دین کے اوپر کوئی حملہ کرے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے میرا معاملہ ہے، या दीन के अंदर गुफ्तगु थी और अब जो कुछ है उसका ताल्लुक दीन से नहीं है, मुझसे है, इस जगह के लिए है कि फरमाया सब्र करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे खिलाफ कर रहा है ना, इसको खुदा पे छोड़ दो। अगर सिर्फ जातियात का मामला है, इसको खुदा पे छोड़ दो और ये जो बोल रहा है इसको बोलने दो, और इससे कहो तुम 10 भी बोलो मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। और इस मामले में एक बात मुतमईन होकर जहन में रख सकते हैं, अगर आप पर किसी ने बदकलामी की है, मैं बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूं इसको, आपकी किसी ने गलत बात कही है, बदकलामी का मतलब किसी ने गाली दे दी, आप नहीं बोले, अब आपकी इज्जत का मुदाफे दिफा करने वाला खुदा है। सब्र कर लो, सब्र कर लो। एक अजीब इसमें नफीस वाक्य बयान करते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो शेख अंसारी के बारे में बयान करते हैं, शेख मुर्तजा अंसारी के बारे में, या किसी और आलिम के बारे में हो, मुमकिन है मशहूर शेख मुर्तजा अंसारी के बारे में हो, और अगर उनके बारे में हो तो भी कोई सही, बिल्कुल सही है, चूंकि उनका मकाम भी बहुत आला था। बयान करते हैं, कहीं से गुजर रहे थे तो उनका कोई मुखालिफ सामने से आया, और जो मुखालिफ आया उसने उनको कुछ बुरा भला कहा। ऐसे जाहिल बहुत होते हैं माशरे के अंदर, नहीं पहचानते लेकिन बुरा कहने में देर नहीं लगाते। ये वाकया मुझे याद है, मुल्ला सदरा का बयान करते हैं, मुल्ला सदरा अपने ज़माने में बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े फिलासफर थे, अपने ज़माने में कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए थे, अपने ज़माने में कंट्रोवर्शियल थे। अब कोई मुल्ला सदरा को बुला नहीं क्या आएगा, एक ज़माना था जब हो गया था। तो मुल्ला सदरा के खिलाफ काफ़ी मेहनत कर रहे थे लोग, खुम से थोड़े से फासले पर एक गार है, वो एक गार में रहा करते थे, इतनी मुसीबत हो गई थी कि शहर छोड़ के जाना पड़ गया था। अलबत्ता उसमें वो कंसंट्रेट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे, एक किताब लिख रहे थे, वो किताब इस वक्त मौजूद है, वो ज़ाहिर है बहुत आला पाए का फ़लसफ़ा उसके अंदर बयान हुआ हुआ है। ये भी अर्ज़ करता चलूँ, कहीं इससे महरूम न रह जाएं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मुझे कोई इल्मी मुश्किल पेश आती है और मैं हल नहीं कर पाता था तो मैं कुम्मे बीबी के रोज़े पर जाके मदद मांगता था। और एक जगह पर कम से कम किताब में लिखा है, ये वो मुश्किल है जो बीबी की इनायत से हल हुई है, मैं नहीं हल कर सकता था। ये दर बहुत कुछ लेने के लिए है, और खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह हम छोटी छोटी चीज़ें लेके वापस ना आ जाए। तो ये इस कसम का है, मुल्ला सदरा का बड़ा मकाम था। एक दफ़ा कौम आए और वहाँ पर किसी को देखा, अब कुम की इसमें कोई खासियत नहीं कि आप कहें कुम ऐसे कामों के लिए था, नहीं, एक गलत आदमी कुम के अंदर बैठा हुआ था। बहरहाल वो कुम आए और उन्होंने एक आदमी को देखा जो तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मल अन मुल्ला सदरा, अल्लाहुम्मल अन मुल्ला सदरा, अल्लाहुम्मल अन मुल्ला सदरा, नऊज़ु बिल्लाह ताला। मुल्ला सदरा ने बिल्कुल तहम्मुल दिखाया, नज़दीक आए, उससे पूछे तुम किस पे लान कर रहे हो? कहने लगा मुल्ला सदरा पे। अच्छा, क्यों लान कर रहे हो? उसने ऐसा कोई जवाब दिया, कहने का मुल्ला सदरा पे लान कर रहा हूं मिसाल के तौर पर क्योंकि वो मुशरिक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, करते रहो, चूंकि मुल्ला सदरा मुशरिक नहीं है, तुम करते रहो। फिर जिस मुल्ला सदरा पे तुम लान कर रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो कि मुल्ला सदरा मुशरिक है, उस मुशरिक मुल्ला सदरा पे लान करते रहो, असरी मुल्ला सदरा मुशरिक नहीं है। ये सब्र और तहम्मुल की इंतहा है। फिर इतना इंसान तहम्मुल कर ले, और फिर मैं अर्ज करूं अगर बात यहां तक आई तो एक और कदम आगे बढ़ाऊं, जिसको मैं बहुत अपने दिल के अंदर सोचता हूं कि गैर मासूमीन के अंदर शायद ये बहुत बड़ी बात है, मासूमीन के अंदर इससे बड़े करामात और अमाल मिल जाएंगे, गैर मासूम के अंदर ये होना बड़ी बात है। मंसूर हल्लाज का नाम आपने सुना होगा कि जिसकी खाल उतार दी गई थी, जिसको कत्ल किया गया था, सलीब पे चढ़ाया गया था, अनल हक कह दिया था, जो लोगों को समझ में नहीं आया था और उन्होंने उसको सज़ा दे दी थी। तो मंसूर हल्लाज को जब सज़ा दी जाने लगी तो इसको पब्लिसाइज किया गया, एक चौराहे के ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको रखकर वहाँ पर इसको कोड़े लगाए गए, इसको फांसी पर चढ़ाया गया, जो हरकतें थीं वो की गईं उसके साथ। तो इसकी सज़ाओं में से एक सज़ा ये थी कि टर्मिनोलॉजी में कहते हैं खारदार, दुर्रे खारदार, पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था फारसी में, खार कहते हैं कांटे को और दुर्रा कहते हैं कोड़े को। तो खारदार कोड़ा यानी एक ऐसी वो लकड़ी या लोहा लेते थे जिसके अंदर कांटे निकले हुए होते थे और उससे मारा करते थे कमर के ऊपर। तो उसमें यह होता था कि 3-4 के बाद जिस्म की बोटियां निकल के उड़ने लगती थी। इनको शायद 200 दुर्रे मारे हैं, शायद 1000 मारे, नहीं मालूम क्या हशर किया है। पहले दुर्रे मारे, अच्छा, जब धुरे मारे उसके बाद इस बंदे खुदा के हाथ पांव काट दिए, हाथ पांव काट दिए। अच्छा, ये लोग जब तकलीफ देने लगते थे तो हाथ पांव काट के छोड़ते नहीं थे कि खून बहे और मर जाए, हाथ पांव काटते थे और आगे से खाल सी देते थे ताकि तकलीफ से जिंदा भी रहे। आखिरी स्टेज में इनको रस्सी पे लटकाकर इनकी खाल उतारी थी मंसूर हल्लाज की। मंसूर हल्लाज बड़ा आरिफ आदमी था और सब्र और तहम्मुल इस आदमी के अंदर कमाल का था। जब हाथ पांव कट गए तो ये वहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ था, इसके कुछ शागिर्द अतराफ में थे, तो ये कटे हुए हाथों से इसने दुआ के लिए हाथ खड़े किए। कटे हुए हाथों से पहले अपने कटे हुए हाथों को अपने चेहरे पे मला। अब मैं मुख्तलिफ बयान हुए, मैं जो बयान मैंने पढ़ा था वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। पहले कटे हुए हाथों को अपने चेहरे पे मला, तो एक शागिर्द खड़ा था, उसने कहा कि उस्ताद ये क्यों किया? कहने लगा कि मेरा खून बह गया ना तो चेहरे का रंग जर्द हो रहा है, तो मैंने खून मलाए ताकि कोई ये ना समझे मंसूर डर गया। ये मंसूर नहीं डरा, मैं मौत से नहीं डरता। तो कह रहा मैंने चेहरे के कलर को रेड किया है ताकि कोई ये ना समझे कि मेरा रंग पीला पड़ गया तो मैं मौत से पीला पड़ा हूं। नहीं, मौत से नहीं, नहीं पीला पड़ता, मैं नहीं डरता किसी से। उसके बाद इसने कटे हुए हाथ ऊंचे किए और दुआ पढ़ी। तो इसके शागिर्द ने पूछा किसको दुआ की? कहा इनको दुआ की जिन्होंने मारा है। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और इसके खिलाफ गालियां दे रहे थे, इसके खिलाफ चिल्ला रहे थे, तो उसने कहा किसको दुआ की? कहा इनको दुआ की। कहा इनको क्यों दुआ की? कहने लगा ये उस मंसूर को मार रहे हैं जो इनके ख्याल में इनके दीन का दुश्मन है, मैं दुश्मन नहीं हूं इनका, मुझे नहीं मार रहे, उस मंसूर को मार रहे हैं जो ये समझ रहे हैं इनके दीन का दुश्मन है, तो मैं इनको दुआ दे रहा हूं कि खुदाया इनको माफ कर दे, इन्होंने मंसूर को नहीं मारा, दीन तेरे दीन के दुश्मन को मारा है, मुझे नहीं मारा है। ये तहम्मुल गैर मासूम में कहीं मिलेगा? कमाल है वाकई। ये वो है जो मौला ने फरमाया है, अगर तुमको कोई एक कहे कि तुम एक कहे कि तुम एक बोलोगे तो मैं तुमको 10 सुनाऊंगा, तो उसको बोलना तुम 10 भी सुनाओगे ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, मुझसे लड़े हो मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहना बहुत आसान है और मेरी तरह पढ़ना भी बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। खुदा इंशाल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद ये अखलाक का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वमन शतमका फकुल लहू इन कुंता सादिकन फीमा तकूल फसअलुल्लाह अन यगफिर ली व इन कुंता काज़िबन फीमा तकूल फल्लाहु असअल अन यगफिर लक अन यगफिर लक। फरमाया अगर तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई बुरा भला कहे, तो उससे ये कहना कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं दुआ करता हूं कि खुदा मुझे माफ करे, और अगर तुम गलत बयान कर रहे हो तो मैं दुआ करूंगा खुदा तुम्हें माफ कर दे। कोई तुम्हें गाली दे तो कहो कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं दुआ करूंगा कि खुदा मुझे माफ कर दे, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयान ही कर रहे हो, तो मैं दुआ करूंगा खुदा तुम्हें माफ करे। सही। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का बड़ा मकाम है उलमा के अंदर। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने हलाकू खान का ज़माना देखा है, और हलाकू खान के ज़माने में बड़ी मेहनत करके बहुत सारे लोगों की जान बचवाई थी, अगरचे लोगों ने ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी पे बेइंतहा इल्ज़ामात लगाए कि बनी अब्बास की हुकूमत ख़त्म इन्होंने करवाई थी, इन्होंने बगदाद तबाह करवाया, बहुत इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जो हमारे ख्याल में कतअन सही नहीं है, और इसके बहुत सारे लोगों ने जवाबात भी दिए, आर्टिकल्स बुक्स इसके ऊपर पब्लिश हुई। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का बड़ा मकाम था, और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हलाकू खान की नस्ल में तीसरी नस्ल मुसलमान हो गई थी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसों की कोशिशों से। हलाकू खान जो वहशी जानवर बन के आए थे, और ये मंगोलिस्तान जो आजकल का इलाका है वो चाइना के नज़दीक, वहाँ से उठ कर आए थे, ये लोग बिल्कुल वहशी थे, अनसिविलाइज, बिल्कुल कहते थे हम लोग कहर खुदा की निशानी है, लिहाजा कभी रहम नहीं करेंगे, और इंसानों को ख़त्म करने में माहिर थे। निशापुर इन्होंने बर्बाद किया था, वो तफसीलात उसकी। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की काविशों से ये जो वहशी कौम आई थी ये तीसरी नस्ल में मुसलमान हो गई थी, और उसके बाद फिर इन्होंने इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ किया और कोशिशें की। किसी ने ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को उस ज़माने में जब वो ताकत में थे और वजारत पे थे लिखकर उनको एक गाली देकर भेजा कि तुम कुत्ते हो, मैंने ब्लंटली इसलिए बोल दिया कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इतनी ताकत में होते हुए किसी के साथ कोई कितनी बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने जवाब में लिख के भेजा कि कुत्ते की जो खसूसियात बयान की गई हैं वो ये हैं, और मैं तुमको यकीन दिला रहा हूँ मेरे अंदर ये नहीं है। लिहाजा ये जो तुमने लिख के भेजा ये सही नहीं है। तहम्मुल की इंतहा होती है। ठीक है, कुत्ते की जो खसूसियात हैं वो ये हैं, उसमें ये होता है, और मैं तुमको यकीन दिला रहा हूँ कि ये मेरे अंदर नहीं है। ये अब कौन इतना तहम्मुल लाए, लेकिन ये आगाज़ है काम का। जब तक हम इन नफसानियतों से बाहर नहीं आएंगे, ये हमारा जो इस वक्त एक बैरियर बना हुआ है आगे बढ़ने का मानवियत के मामले में, ये नहीं टूट पाएगा। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमसे ये सवाल करते हैं कि हम लोग कैसे करें कि मानवियत नसीब हो, ये हमारी मुश्किलात हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद फरमाया मन वादक बिल खना फइद हो बिन नसीहत वल वर्रआ, और अगर तुम्हें कोई ये वादा करे कि मैं इंतकाम लूंगा, अगर तुमसे कोई कहे कि मैं फलां चीज का तुमसे इंतकाम लूंगा, तो तुम उसको वादा करो कि मैं तुमको नसीहत करूंगा और मैं तुम्हारे हाल की रियायत करूंगा, मैं कभी इंतकाम नहीं लूंगा। ये तीन उमूर थे जिनका ताल्लुक अखलाकियात से है, और इन तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो ये कि आपको सब्र करना है, आपको तहम्मुल दिखाना है। मैं इन तीनों को गिन देता हूँ। फरमाया कि अगर कोई तुमसे कहे तुमने एक बात कही तो मैं 10 सुनाऊंगा, आप कहो कि तुम 10 भी सुनाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं सुनाऊंगा। अगर कोई गाली देता है तो कहो कि अगर तुम सादिक हो तो खुदा मेरी मगफरत करे, और अगर तुम गलत बयानी कर रहे हो खुदा तुम्हारी मगफरत करे। और अगर तुमसे कोई कहे मैं इंतकाम लूंगा, मैं गज़ब दिखाऊंगा, तो तुम उससे कहो कि तुम कुछ भी करो मैं तुमको नसीहत करूंगा और मैं तुम्हारे हक की रियायत करूंगा, मैं जुल्म नहीं करूंगा। उसके बाद तीन बातें मौलाना ने फरमाई हैं इल्म के सिलसिले में, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि ये हदीस शरीफ पर बयान खत्म हो। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इन तीनों में बहुत, अब जाहिर है कि तमाम जुमलात इंतहाई अहम है, लेकिन इनमें एक खास तवज्जो है जो मुझे और आपको आज के ज़माने के एतबार से करनी पड़ेगी, तो मैं कुछ हिस्सा अर्ज करके कल इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद तबसरा अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में। फरमाए अम्मा लिवाई फिल इल्म, वो जो तीन इल्म के बारे में हैं वो ये नसीहतें, फस अलिल उलमा मा जहिलता व इयाका अन तसअलहुम तअत्तुतन व तजरिबतन। फरमाए जो नहीं जानते हो वो आलिम से पूछ लो, जो नहीं जानते हो वो आलिम से पूछ लो, और होशियार रहना, खबरदार, कभी उसको जहमत में डालने के लिए या उसको आजमाने के लिए मत पूछना। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है, उसको जहमत में डालने के लिए भी मत पूछना। यानी कोई एक ऐसी चीज है ना तुम्हारी दुनिया बनेगी ना आखरत बनेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम क्या था भाई? तुझे खबर शब अव्वल खबर ये सवाल होना है क्या? फरिश्तों ने तुमसे कुछ और पूछना है, ये नहीं पूछना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मादर का नाम क्या था, लेकिन उठा के पूछेगा ताकि ये देखे इसको आता है नहीं आता। नहीं आता तो वो कम से कम जाके आज पूरा दिन लगाए तो सही कि मादर का नाम था क्या इसना। बस ऐसे ही। अच्छा, बाज़ औक़ात सवाल होता है वाकई अच्छा सवाल होता है, और इंसान उससे सीखता भी है, बहुत सीखता है। बात सवाल करने वाले बड़े अच्छे सवाल करते हैं, और इंसान को इतराफ़ करना होता है कि हाँ ठीक है मुझे नहीं आता है, मैं इसको ढूंढ के लाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, आपको पता है निस्फ़े इल्म है कि कोई इंसान इतराफ़ करे कि हाँ मुझे नहीं मालूम, मैं उसको ढूंढूंगा। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन बहरहाल एक क्लास ऐसी भी मौजूद है जो क्या कर रही है, वो मैंने कहा कि वो ऐसे सवाल लेकर आ रही है जिसका उसको कोई क़यामत से ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना जन्नत में जाना ना जहन्नम में जाना उस सवाल से, लेकिन बहरहाल वो लेकर आए जहमत में डालने के लिए, तजर्बा करने के लिए। और बात अच्छे सवाल आदमी है, मैंने चूंकि एक बुरा सवाल कह दिया एक अच्छा सवाल भी अर्ज़ कर दूँ। एक आदमी एक दफ़ा आया और उसने बहुत खूबसूरत एक सवाल किया। उसने कहा कि मौलाना हम जितने भी जुम्मे के खुतबे सुनते हैं ना, इसके आखिर में ये एक आय करीमा पढ़ते हैं, और उस आय करीमा के अंदर तस्करा होता है कि याइज़ुकुम लअल्लकुम तत्तखून, के मिसल इन अल्लाह यामरुकुम بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہنے لگا یہ آئے کیوں پڑھتے ہیں؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. کہنے لگا یہ آئے کریمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات صحیح ہے کہ بھائی ہمارے پاس خطبے کے اختتام میں جو حکم شرعی اور فقہی ہے وہ یہ کہ پہلے خطبے کے آخر میں بھی، دوسرے خطبے کے آخر میں بھی خطیب اور جمعہ کا خطبہ پڑھنے والا قرآن کریم سے کچھ پڑھے، قرآن کریم سے کچھ پڑھے، یہ بہت اوپن ہے. یہی آئے کریمہ کیوں؟ تو اتفاقاً یہ بات ہاں سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں ایک کوشچن اس نے نکالا ہے اور رائٹلی لگتا ہے کہ ہاں یہ بات اس کی صحیح ہے، یہ آئے کریمہ پرٹیکولر کیوں؟ یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے. سنت کیا تھی؟ اس جگہ پر بنی امیہ اہل بیت پر فحش کہتے تھے، خطبے کے اختتام میں آخری جملات میں بنی امیہ کے دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر برا بھلا کہا جاتا تھا. جب 98 ہجرہ میں عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو اس کے سامنے یہ سوال آیا کہ اس کو یہ پریکٹس ختم کروانی تھی. اس نے اس پریکٹس کو ختم کروانے کے لیے اپنے دربار کے اندر ایک سین کریٹ کیا جس کے اندر لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو تم علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئے گا. دربار کنونس ہوا. جب دربار کنونس ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے حکم جاری کیا کہ آخر میں سب یہ آیت پڑھو گے. اور اس میں کیا تھا؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، و ایتاء ذی القربا، اور ذی القربا کو ان کا حق دے دو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ آئے کریمہ پڑھو تاکہ تم کو یاد رہے کہ تم نے قربا کا حق نہیں دیا تھا اور تم نے ناانصافی کی تھی. اس کی بنائی ہوئی سنت چلتی رہی 1400 سال سے، اب تک لوگ آئے کریمہ یہی پڑھ رہے ہیں. اور اس کا ایک پیٹرن اس وجہ سے بنا، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد و آل محمد. فرمایا عالم سے سوال کرو ما جہلت، جو تم نہیں جانتے، وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَتُّتًا وَتَجْرِبَتًا، اور خبردار ہرگز ان سے زحمت میں ڈالنے کے لیے یا صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں آتا ہے نہیں آتا، یہ کام مت کرنا. اچھا اِيَّاكَ مطلب کیا ہے؟ عربی میں جب امام استعمال کرتے ہیں وَإِيَّاكَ، اِيَّاكَ مطلب ہوتا ہے خبردار، ہوشیار، یہ کام ہرگز نہیں کرنا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا. یعنی کوئی اتنا بڑا رسک ہے اس کام کے اندر کہ امام یہ بیان نہیں کر رہے کہ کرو گے تو کیا ہوگا. فرمانے یہ ہرگز مت کرنا اور کانسیکوینسز نہیں بتا رہے، اس کا مطلب ہے اس کے نتائج بہت خراب ہیں. اچھا اب ہم لوگوں کو اپنی عقل سے، ناقص باتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، کم سے کم نتیجہ کیا ہے؟ کم سے کم نتیجہ یہ علم کی بے احترامی ہے، علم کا غلط استعمال ہے، سوال کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں اس کے نتائج میں ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس چیپٹر میں. جب بھی آپ دیکھیں نا کسی معاشرے کے اندر جو چیز ویلیو ہونا چاہیے تھی وہ ویلیو نہیں ہے، تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس سوسائٹی میں اس چیز کے بارے میں کوئی ڈس آرڈر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ویلیو اس کی ختم ہو گئی ہے، خدا نے چھین لی ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں علم کی حیثیت کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے علم اور عالم کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اور اب ہم اس جگہ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں وہ ظلم توڑنا پڑے گا. جب تک نہیں توڑیں گے حالت یہی رہے گی. شاید ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہوا ہے، اور بھی ہوئے ہوں گے، ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے علم کو اپنی دکھاوے اور پوچھنے والے نے علم کو اپنی اہمیت بڑھائی کا ذریعہ بنا لیا. اگر علم عالم کے لیے بڑھائی یا پوچھنے والے کے لیے بڑھائی کا ذریعہ بنے تو پھر علم معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے، پھر جہالت باقی رہ جاتی ہے. اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. نہ جاننے والا علم کے ذریعے فخر کرے، لوگوں کے اوپر برتری جتائے، اور نہ پوچھنے والا علم کے بہانے کسی کی ذلت کرے تاکہ علم کا مقام دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. بس عالم سے سوال کرو جو نہیں جانتے، اور جو جانتے ہو وہ پوچھے پھر، نہیں جو جانتا ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اسے. फरमाया जो जो नहीं जानते वो पूछना। जो अब हमारे यहाँ एक और सीन, शायद मुझे मौका मिल गया, शायद इस रिवायत पे मैं अपना कुछ तजर्बा इस्तेमाल करके जो जो होता रहता है वो देखता हूँ। कोई सवाल करता है, जवाब देने वाला जवाब देता है, जो पूछने वाला होता है वो कहता है मौलाना मैं तो जानता हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरे लोगों को पता चले। सरी खिलाफ वर्जी इस हदीस शरीफ की, सरी खिलाफ वर्जी। क्यों? जो तुम्हें नहीं मालूम है वो तुम्हें पूछना है, और जो मालूम है दूसरों को सुनाने के लिए मैं सवाल कर रहा हूं, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है यहां पे। बस सवाल करो आलिम से जो नहीं जानते, और खबरदार होशियार कभी भी सवाल ना करना जहमत में डालने के लिए या तजर्बा करने के लिए। फिर एक और मसला, وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ شَيْئًا وَخُذْ بِالْإِحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا خبردار ہوشیار کبھی بھی اپنی ذاتی رائے پر عمل نہ کرنا دین کے معاملے میں جس میں تمہیں راستہ ملنا ہے۔ ذاتی رائے پہ عمل کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے نے کوئی بات کہی، اس سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا ہے مجھے دین ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ इसका मतलब क्या है? तुम दीन भी वो अमल करोगे जो तुम्हारी खोपड़ी में ऐसे आ गया है? भाई कम से कम दीन तो खुदा से ले लो। कपड़े का रंग कैसा है उसमें तुम्हें इख्तियार है, जॉब कैसी करना चाहते हो चलो उसमें भी तुम अपनी मर्जी चला लो, लेकिन आप कह रहे हो मैं इबादत भी वैसी करूंगा जैसे मुझे समझ में आई है। कम से कम ये तो खुदा से पूछ के करो। ये भी खुदा से पूछ के नहीं करोगे तो बचेगा क्या जिंदगी के अंदर? इमाम फरमा रहे वो इयाक अंतअमल बिरायक शैअन, और किसी सूरत में अपनी जाती राय पे अमल नहीं करना। दीन है, दीन का मतलब दीन से पूछना, खुदा से पूछो, अपनी जाती राय पे अमल ना करना। वो खुज बिल एहतियात फी जमी मा तजिदु इलैहि सबीला, और तमाम ऐसे मामलात जिसमें तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता है, यानी इसमें इम्कान है कि शायद तुम गलती कर रहे हो, इन तमाम मामलात में फिर एहतियात कर लेना। एहतियात करना, बेधड़क मत कूदो कि मिसाल के तौर पर तुमने कहा बस मुझे जो समझ में आता है मैं वो करूंगा। नहीं, इसकी इजाजत नहीं है हमारे पास कि मिसाल के तौर पर जो आदमी चाहे दीन के अंदर जिस तरीके से करे, ये तो दीन गुमराह हो जाएगा, फिर हमारे हाथों दीन बदनाम हो जाएगा। फिर मैंने बहुत वक्त दिया आपका, आखिरी जुमला अर्ज करूं, फिर कल इसके ऊपर दो चार मिनट, शायद दो चार मिनट से ज्यादा इसके ऊपर फिर बात करनी होगी इस मसले के ऊपर। आखिरी जुमला, वाहरिब मिनल फुतिया हरबिका मिनल असद, जो इसके आखिरी जुमलात बहुत खूबसूरत हैं, इमाम ने खुदा हाफिज कहते वक्त कहे हैं, वो भी मैं कलर्स करने की कोशिश करूंगा। फरमाया और फतवा देने से ऐसे भागना जैसे कोई शेर देख के भागता है। फतवा देने से ऐसे भागना जैसे कोई शेर देखकर भागता है, अरबी में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, वाहरुब मिनल फुतिया हरबिका मिनल असद, यानी जैसे कोई शेर देखता है तो वहशत आती है, भाग जाता है, कहता है मैं यहां खड़ा नहीं रहूंगा। फतवा देने के मौके पे ये करना, क्या मतलब? अहल नहीं हो फतवा मत देना। इस वक्त ये आलम है कि जो रिटायर्ड है वो दीन का मुफ्ती है। इस वक्त ये आलम है, बाखुदा इंजीनियर रिटायर्ड दीन का मुफ्ती, डॉक्टर रिटायर्ड दीन का मुफ्ती, आर्किटेक्ट रिटायर्ड दीन का मुफ्ती। ये पता नहीं दीन कौन सी ऐसी साइंस है कि रिटायरमेंट के बाद इसमें पीएचडी सबको मिल जाता है। बाकी हर फील्ड के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता बाद औकात वाकई जिसको देखो जैसे रिटायरमेंट खत्म होता है वो कहता है मैं सब कुछ ये हो गया। तो ये भाई अजीब बात है। इमाम फरमाने हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। पीछे कह रहे हैं कि अगर जहमत फरमाए दुरूद पढ़ते हुए जरा सा आगे तशरीफ ले, आखिरी मिनट से वैसे तो दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद बार देगा दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा बस खुदा का है, खौफ बस खुदा का है, हमारा वो उसूल है, मुनाफ़िक़त की मौत है। माशाल्लाह, ये जो जुमले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया आखिरी जुमला, वाहरे मिन अल फुतिया हरबिका मिन अल असद, फतवा देने से ऐसे भागो जैसे कोई शेर को देख के भागे। अब कोई कहे दुनिया में किसी को फतवा ही नहीं देना चाहिए, क्या ये मतलब होगा? नहीं, हरगिज नहीं है। कूफा से एक बंदा खुदा इमाम के पास मिलने आता है, इमाम से मिलने आता है, और इमाम से कहता है मौला मैं हज के मौके पर हज का बहाना करके कूफा से मदीने आता हूँ आपसे मिलने के लिए, साल में एक दफ़ा आ सकता हूँ, वो भी हर साल नहीं आ सकता, मुझे मुश्किल पेश आती है, मुझे दीन के बारे में मुश्किल पेश आती है, मैं क्या करूँ? इमाम ने फरमाया तुम मुस्लिम को जानते हो, तुम्हारे कूफा में होता है। कहा मैं जानता हूँ। फरमाया उससे फतवा लिया करो, उससे फतवा लिया करो, वो सिकतुन सिकतुन, ये हमारा काबिल एतमाद आदमी है। अपनी हयात तैयबा में कुछ लोगों को मामूर करते थे कि तुम फतवा दिया करो, तुम लोगों को दीन सिखाया किया करो। बस कोई ये ना कहे कि इस जुमले का मतलब ये होगा कि अब कायनात में किसी को फतवा देने का हक नहीं है। अगर आपने ये काम किया गैबत के जमाने में, इसका मतलब क्या है? अब चंद लोग फतवा नहीं देंगे बल्कि सब फतवा देंगे। ज़ाहिर है जब कोई गाइड नहीं होगा तो फिर हर आदमी अपनी मनमानी करेगा, और इमाम ने फरमाया था हरगिज अपनी राय पर अमल नहीं करना है तुमने। तो इन बातों को इस तरह से मत ले कोई। तो मैंने कहा एहतियातन आपकी खिदमत में अर्ज करूं इन तीन पॉइंट्स को, कल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और आखिर में जो जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया उसको बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आपके जहन में है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? जब उनवान बसरी ने इल्म मांगा था, इल्म मांगा था, इल्म मांगा था, बात आई थी हकीकत उबूदियत के ऊपर। हकीकत उबूदियत के तीन पॉइंट्स, उन तीन पॉइंट्स के बाद उनवान बसरी ने कहा मौला मुझे वसीयत करें। इमाम ने फरमाया मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें और हर उसको जो राह खुदा पर चलने वाला है तीन चीज़ें नफ्स की रियाजत में से। जब भूख ना लगी हो तो मत खाओ, अल्लाह का नाम लेके खाओ, हलाल खाना, और अपने पेट को खाने से मत भरना। दुनिया में कोई ज़र्फ़ भरने के काबिल इससे बुरा नहीं है। और अगर तुमने ये काम किया कि बग़ैर इश्तहा के खाया तो हिमाकत और कम अकली तुम्हें घेर लेगी, ये काम मत करना। रियाजत नफ्स करना, अगर तुमसे कोई कहे एक कहोगे दस सुनोगे तो तुम कहना तुम दस भी कहो मैं एक भी नहीं सुनाऊँगा। और तुम किसी के ऊपर कोई तुमको कहे कि मैं तुमसे इंतकाम लूँगा तो तुम कहना मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे हक का ख्याल रखूँगा। और कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, दूसरा पॉइंट मैं देख लूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं बयान करने में गलती कर दूँ और आपको किसी और गलती में मुब्तला कर दूँ। इमाम ने फरमाया अपनी राय पर हरगिज़ अमल ना करना।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद
सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज्जिल फरजहुम। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जिल फरजहुम। इमाम फरमाया अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम मनशाता मका फ़कुल लहू, अगर तुम सादिक हो तो खुदा मेरी मगफरत करे, और अगर काजिब हो तो खुदा तुम्हारी मगफरत करे। कोई तुम्हें इंतकाम का वादा करे तो मुझसे कहना मैं तुम्हारे लिए नसीहत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए रियायत करूँगा तुम्हारे हकूक की। आखिरी बात इल्म के हवाले से थी, फरमाया जाहिल जिस बात का इल्म ना हो जहल हो उसका आलिम से सवाल करना, और हरगिज़ ज़हमत में डालने के लिए तजर्बे के लिए उससे सवाल मत करना। और इमाम ने इस सिलसिले में और नसीहत फरमाई, फरमाया कि और अपनी राय पे हरगिज़ अमल ना करना, एहतियात इख्तियार करना, और फतवे से ऐसे ही भागना जैसा कि कोई इंसान शेर से भागता है। बाकी अमल मेरे और आपके पास है। हम सब के पास एक बहुत बड़ी सहूलत हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और वो ये है कि आप फर्श अज़ा पर हैं। मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी मुद्दत हो गई है मजालिस पढ़ते हुए, इन मजालिस पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ। ऑब्ज़र्व करने में मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर बैठे हो तो दिल पे एक असर होता है, बाहर वो नहीं होता, बाहर वो नहीं होता। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई तासीर है। इसी कमरे में दोबारा आएंगे ना फिर शायद ना हो, जब तक ये पैटर्न है ये तासीर है। आपने ज़िंदगी में अगर कोई अच्छी बात सुनी मजलिस के अंदर, वहीं बैठे बैठे फैसले कीजिएगा कि आपने अमल कैसे करना है। ये पैटर्न एक दफा खत्म होता है फिर नहीं मालूम क्या हो जाता है, फिर वो तासीर नहीं होती। तो जो कुछ आपने सुना है इस पर अमल करने के लिए अभी अभी फैसले कीजिएगा कि आपने किस तरीके से इसके ऊपर अमल करना है। और जब आपको लगे कि मिसाल के तौर पर ये आपको मुश्किल पड़ सकता है, इसमें आपको मुश्किल पेश आएगी, तो इसका एक बहुत अच्छा रास्ता ये है कि आप सईदुश्शोहदा के नाम पर ही मदद तलब कीजिएगा कि मौला मदद कैसे मिलेगी। कि मसलन मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने अय्याम गुजरने के बाद एक बात सुन ली है, मैं इस पर अमल करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर ताकत कम है, तो क्या मुझे मदद मिल सकती है? तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सईदुश्शोहदा के नाम पर एक मदद मिल सकती है, नसीब हो सकती है। और अगर कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, सईदुश्शोहदा तक पहुँचने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, सईदुश्शोहदा तक पहुँचने के वसीले बहुत हैं। और ये जो खुदा ने हमारे और आपके दिलों में गम रखा है सईदुश्शोहदा का, ये बहुत बड़ा वसीला है। मैं मामूलन सोचा करता हूँ हम लोग जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, बचपन से मजलिसें सुन रहे हैं, कुछ हमारी तबीयत ऐसी बन गई है, कुछ अल्फाज से हमारा रिश्ता जुड़ गया है, दूसरे लोगों का वो रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ, हम लोगों का जुड़ा है। अच्छा मिसाल के तौर पर क्या है, आप कभी अकेले में भी बैठे हो ना और आपको प्यास लग रही हो, कहीं ना कहीं जहन में इमाम की प्यास आने लगती है, ठीक है, किसी और की प्यास का तस्करा होगा। यानी मसलन मैं अपने तौर पे सोचता हूं दुनिया में शायद कोई ऐसा हो कि जो प्यासे को पानी ना पिलाए, इमाम का मानने वाला कभी नहीं करेगा। इमाम का मानने वाला दुनिया में जहां कहीं किसी प्यासे को देखता है सबसे पहले कहता है इसको पानी पिला दो, क्यों? मैंने अपने मौला की प्यास सुनी है, अब किसी प्यासे को प्यासा नहीं छोड़ेगा, हर प्यासे को पानी पिलाना चाहता है। ये हमारा एक ताल्लुक जुड़ गया है। और इसी तरह अजीजो हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है, दुनिया में जो कोई हमारे सामने कहे यतीम बच्ची, हमें हुसैन की यतीम बच्ची याद आती, हमारा ताल्लुक जुड़ गया है। हम प्यास से कुछ और समझते हैं, हम यतीम बच्ची से कुछ और समझते हैं। दुनिया में कोई कहे जिंदान, किसी और को कुछ और समझ में आता हो, हमें जिंदाने शाम याद आता है, हमें जिंदा ने शाम याद आता है। और दुनिया में अगर कोई कहे उम्मीदों भरा एक जवान, दुनिया को कुछ और समझ में आता हो, हमें कासिम की याद आती है, हमें कासिम याद आता है। इस जवान के अंदर क्या क्या जज्बात हैं, क्या क्या रवैये हैं, बस एक जुमला शबे आशूर से इमाम तमाम असहाब को बता रहे हैं, तुम यहाँ गिरोगे तुम्हारा जन्नत में ये मकाम होगा, तुम्हें खुदा ये नसीब करेगा, हर सहाबी को मकाम समझा रहे हैं, मकाम बता रहे हैं। अचानक कासिम ने देखा कि सबके बारे में बात हो रही है, मेरा कोई तस्करा नहीं हुआ। अपने चचा के सामने खड़े होकर कहा, अम्मू जान मैं शहीद होऊंगा या नहीं होऊंगा? अजब बेताबी है, अजब बचपना है इस जुमले के अंदर। फरमाया, अम्मू जान मैं शहीद होऊंगा या नहीं होऊंगा? सईदुश्शोहदा ने फरमाया, बेटा कासिम तुम भी शहीद हो जाओगे, शीरखार अली असगर भी मारा जाएगा, शीरखार अली असगर भी मारा जाएगा। जैसे ये सुना, अब इस बच्चे की हाशमी गैरत, फौरन कहा, अम्मू क्या दुश्मन हमारे खेमों तक पहुंच जाएंगे? क्या हमारे खेमों में आ जाएंगे दुश्मन? अब सईदुश्शोहदा गोया कासिम का दिल रखना चाह रहे थे, नहीं बताया कि बेटा शाम गरीबा भी है यहाँ पर, नहीं समझाया कासिम को, बताया बेटा मैं अली असगर को लेकर खुद मैदान जंग पे जाऊंगा, दुश्मन का तीर लगेगा। गोया कासिम का दिल खामोश हो गया। और अब आशूर का दिन आया है, सुबह से सईदुश्शोहदा के सामने जाते हैं, मौला मुझे जाने की इजाज़त दे दें, मैं शहीद होना चाहता हूँ। और मेरे मौला सईदुश्शोहदा जब कासिम को देखते हैं, मौला हसन के जिगर के टुकड़े याद आ जाते हैं,
قاسم کو بار بار واپس بھیجتے ہیں، میرے بھائی کی یتیم ایک ہی نشانی میرے سامنے ہے، بار بار واپس بھیجتے ہیں، اب ایک اصرار اور سید الشہداء نے اجازت دے دی، اب قاسم کو تیار کرنے کو کہا۔ عجیب روایت ہے یہاں پر ہمارے پاس، دو روایتیں ہمارے پاس ہیں اور اپنے طور پہ سمجھتا ہوں دونوں صحیح روایات ہمارے پاس ہیں۔ سید الشہداء نے قاسم کو بلایا، سب کو کہتے تھے تم خیمے سے تیار ہو کر آؤ، قاسم سے کہا بیٹا میرے پاس آؤ میں تمہیں خود تیار کروں گا۔ نہیں معلوم کتنا لگاؤ ہے سید الشہداء کو، قاسم کو کہا قاسم بیٹا میں تجھے خود تیار کروں گا، اب تیار کیسے کریں، جو زرہ پہنا رہے چھوٹی پڑ رہی ہے، جو ٹوپی رکھ رہتے تھے لوہے کی وہ چھوٹی پڑ رہی تھی، بیٹے سے کہا بیٹا تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے چلے جا، تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ سر پہ ایک حمامہ رکھا، امامہ رکھا، امامے کو اگر دونوں رخوں کو نکال کر کندھے پہ لٹکا دیں تو اس کو تحت الحنک تعبیر کرتے ہیں، گردن کے نیچے سے لٹکاتے ہیں۔ اب عزیزو بس سن لینا، تحت الحنک معمولاً دولہا کا باندھا جاتا تھا۔ سید الشہداء نے قاسم کو سجایا ہے، سجایا ہے، تحت الحنک باندھا، تحت الحنک باندھنے کے بعد قاسم کو نزدیک بلایا، کہا بیٹا نزدیک آؤ، قاسم نزدیک آئے، گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے پوچھا امو جان یہ آپ نے کیا کیا، فرمایا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید ان کو رحم آ جائے۔ یتیم کا گریبان چاک ہوتا ہے، فرمایا بیٹا یتیمی کی نشانی آئے، تیرا سن بھی کم ہے، شاید ان اشقیاء کو رحم آ جائے۔ ایک دشمن روایت کرتا ہے، کہتا ہے قاسم خیمے سے باہر آئے یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند باہر آیا ہے، کہتا ہے قسم خدا کی اس بچے کا وجود اتنا مختصر تھا، یہ زلجنہ پہ احساس نہیں ہوتا تھا، اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاب تک نہیں لگ رہی تھیں، اتنا مختصر بچہ تھا۔ کہتا ہے یہ سامنے آیا، ایک دشمن نے دیکھ کر کہا میں اس کو ختم کروں گا، اس نے کہا تو رک جا، اتنا مظلوم بچہ ہے، اتنا معصوم بچہ ہے، کیوں اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ زلعین نزدیک آیا، قاسم کے اوپر ایک ضرب لگائی، قاسم نے گویا ہاتھ سے ضرب کو روکنے کی کوشش کی، ضرب شانے کے اوپر لگی، قاسم زمین کے اوپر آ گئے، زمین پر آئے اب نہیں معلوم، اپنے چچا کو بلایا، کہا امو جان میری مدد کو آئے، اتنا بچہ، اتنا کم سن، جب بھی گرتا تھا اپنے چچا کو بلاتا تھا، یہ چچا یتیموں کا خیال رکھتے تھے نا، تو یتیم نے بلا لیا اپنے چچا کو، ارے چچا بھاگتا ہوا آیا۔ عجیب روایت کیا ہے، واقعی عجیب روایت ہے، کہا حسین ایسے لب کے جیسے عقاب لکبتا ہے، ارے شاید اپنے بھتیجے کو سنبھال لے، نہ سنبھال سکے، عزیز و مسائل سخت ہو گئے، بس ایک جملہ اور، ارے چچا بڑے فوج ادھر سے ادھر ہوئی، شاب غریبہ میں حسین کا لاشا بمال ہوا تھا، قاسم زندہ بمال ہو گیا۔ وسیعلم الذین ظلموا، لاشا ماں تک کیسے آیا یہ کوئی نہ پوچھے، ارے لاشا آتا یہ تو ٹکڑے آ گئے۔ ماتم حسین،